जो समता निधान का विषय है, ये अध्यात्म की बुनियाद है। इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से एकाग्रचित होकर समझने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो आगे की अध्यात्म की मंजिल है, मार्ग है, वो तय हो सके। ये विषय विशेष रूप से इसलिए रखा गया है कि आमतौर पर हम अपने आप को शरीर समझते हैं। कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो आप अपना नाम बताओगे और वो नाम आपके शरीर का ही होता है। क्या वेट है, क्या हाइट है, सारी जितनी डिटेल्स हैं, मान है, सम्मान है, अपमान है, वो सब शरीर करके। तो कोई नहीं जानता कि वास्तव में मैं कौन हूं और ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है। तो वास्तव में मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है और मेरा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, शरीर मुझे क्यों मिला है, ये सारी बातों का निर्णय तभी हो पाता है जब इस विज्ञान को हम सही प्रकार से समझ लें। गीता में भी हमने कई बार सुना होगा, जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और ये सोच के रख दिया कि यदि मैंने युद्ध किया तो जितने भी मेरे कुल के लोग हैं, जितने ही मेरे गुरुजन हैं, ये सब मारे जाएंगे, और फिर बाद में ये जितने भी योद्धा हैं जब मारे जाएंगे, क्षत्रिय मारे जाएंगे, तो वंश का और देश का क्या होगा। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए समझाया कि भाई तू जो इन सबको शरीर समझ रहा है, वास्तव में ये शरीर नहीं। उन्होंने गीता में कहा, अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत, अव्यक्त निधनानी एव तत्र का परिदेवना। ये दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसका मतलब है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। व्यक्त मध्यानी भारत, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता। तो गलतफहमी के कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं, वास्तव में हम बिना शरीर के, हमारा वास्तविक अस्तित्व जो है वो बिना शरीर का। इसीलिए ये विषय समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समता से, समता क्या है। इसके बारे में गुरुदेव का जो चैप्टर है इसमें, समता विलास में, समता निधान का, उसका वचन नंबर 58 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। समता स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी तीन काल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अपने अंतर्विखे अनुभव करता है, तब उसके सब कर्म बंधन नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। तो समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। तो सरल शब्दों में यदि बात कही जाए आम भाषा में, तो ईश्वर का ही दूसरा नाम समता है। चाहे उसको आप ब्रह्म कह लीजिए या अन्य कोई नाम दे लीजिए, चाहे उसको आत्मा के लिए या अन्य कोई नाम दे लीजिए। और इस समता शब्द का जो प्रयोग है, ये गीता में भी पढ़ने को मिलता है, जहां कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। इस समता शब्द का जो समत्वम शब्द है वही समता है, इसका हिंदीकरण किया जाए तो सहनाम समता है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है समता, ये काफी प्राचीन काल से इस शब्द का सत्पुरुष प्रयोग करते रहे। वो कह रहे हैं कि समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है। जो ईश्वर जो हमारे अनुभव में आता है वो ईश्वर की शक्ति अनुभव में आती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि शिव और पार्वती के रूप में पुराण के साथ में देखें तो शिव और पार्वती, शिव क्या है, शिव यदि ब्रह्म है या ईश्वर है तो पार्वती क्या है, उनकी शक्ति है। तो पार्वती क्या है, उनका शक्ति रूप है जिसके द्वारा प्रकृति की रचना और ये सारा विधान चलता है। क्योंकि जीव ईश्वर को जिस रूप में अनुभव करता है वो उस ईश्वर की शक्ति को ही अनुभव करता है, और वास्तव में जो ईश्वर का जो असली रूप है वो अनुभव होने की चीज नहीं है, बल्कि वो बुद्धि या जीव उसमें लीन ही हो जाता है, जिसको हम निर्वाण कहते हैं। लेकिन जब अनुभव करते हैं वो उसकी शक्ति को अनुभव करते हैं। इसीलिए ये पहली पंक्ति आती है कि समता ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है, दोनों ही चीजें इसके अंदर आ जाती है। आगे कहते हैं कि समता स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है, किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। चाहे प्रकृति में कोई भी परिवर्तन होता रहे लेकिन ईश्वर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई वस्तु बने या बिगड़े लेकिन ईश्वर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका शरीर जिंदा रहे या मर जाए फिर भी उस सत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एक उदाहरण के द्वारा यदि समझने की कोशिश करें, क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर है, एक उदाहरण से देखें इसको कैसे समझा जाए। मट्टी आप जानते हो, मट्टी से यदि एक घड़ा बना दिया जाए या कोई खिलौने का आकार दे दिया जाए, उस खिलौने में उस घड़े के अंदर जो मूल चीज है वो केवल मट्टी है। अब 100 प्रकार के आकार भी परिवर्तन हो जाए इसमें लेकिन मट्टी मट्टी ही रहती है। जो दिखाई पड़ता है परिवर्तन वो आकार में दिखाई पड़ता है लेकिन हम उसका आरोपण जो है मट्टी पे कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि मट्टी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है। ठीक उसी प्रकार कितने सारा जगत जो है ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप होते हुए भी यहाँ पे आकार का परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हुए भी, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हुए भी उस ब्रह्म पर जो उसका मूल रूप है उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, वो निर्लेप है। तो वही बात जो है ये वचन आपको डिफाइन कर रहा है, किसी वस्तु का विक्षेप उसको स्पर्श नहीं करता और वो जो सत्ता है वो एक रस होकर विचरती। इसी का वचन नंबर 81 है ये, समता स्वरूप असली ब्रह्म शब्द है, समता स्वरूप असली ब्रह्म शब्द है जो कि हर हालत में पूर्ण है और सबके अंदर व्याप रहा है, शुद्ध बुद्धि और एकाग्र मन से विचार में आ सकता है, नित ही कोशिश करनी चाहिए उस अविनाशी तत्व के जानने की। अब एक दूसरा कहते हैं कि समता स्वरूप असली ब्रह्म शब्द है, क्योंकि एक बार बार जिसने वाणी सुनी है या ग्रंथ पढ़े हैं एक नाद शब्द हम सुना करते हैं, तो ये शब्द या नाद ये एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जिसको हम आम भाषा में ओम करके कहते हैं, ओम क्या है, ओम कोई अक्षर नहीं है जो किसी लैंग्वेज में लिखा जा सके, उस नाद का ही नाद को ही ओम के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही ओम वही नाद है वही अक्षर है और वही ब्रह्म है, उसी के सारे नाम है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। बाइबल में आता है प्रारंभ में केवल शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। और देख रहे कि शब्द को समता कहते हैं, यदि आप समता कहें वो शब्द क्या है उसका दूसरा नाम समता है, कहते हैं शब्द ही ईश्वर था। तो ईश्वर और शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। तो ये देखिए बाइबल के काल से देख लिए चाहे आप गीता के काल से देख लिए या वैदिक काल से देख लिए, वो एक ही चीज आ रही है निकल के, उसी को गुरुदेव ने समता करके ये ग्रंथ में बयान किया है। अब अगली बात आती है कि इस समता का या इस ईश्वर का इस जीव के साथ क्या संबंध है, क्या उसका कोई सहयोग जीव को मिलता है या जीव अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है जो काम करती रहती है। उसके बारे में एक वचन मैं इसी चैप्टर का पढ़ता हूं, वचन नंबर 13 है। समता ही आनंद है, नित है, निर्वाण है, सबकी बुद्धि में उसकी चमक है, इस वास्ते उस प्रकाश की तहकीकात अर्थात खोज करना ही दिव्य कर्म और सत्पुरुषार्थ। सबकी बुद्धि में उसकी चमक है, ये हमारी बुद्धि है, इसके अंदर जो होश है या जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं या इसमें जो ज्ञान है, ये उस ईश्वरीय सत्ता के कारण है। वो ईश्वरीय सत्ता इस बुद्धि का यदि संग छोड़ दे तो बुद्धि अपने आप में कुछ नहीं है। जो कुछ भी इस बुद्धि के अंदर आपको ये होश नजर आता है, ये उस सत्ता के कारण है। इसीलिए गीता में भी और महाराज जी के समता प्रकाश ग्रंथ में भी इस सिस्टम का पूरा बयान किया गया है कि क्या शरीर है ये, क्या इंद्रियां हैं ये, क्या मन है ये, क्या बुद्धि है, क्या ईश्वर है, इस सबकी क्या रिलेशनशिप है आपस में, क्या संबंध है। ये सारा का सारा जो है गीता में भी आता है, महाराज जी के वाणी में भी आता है, क्योंकि जो अवतार है या जो सदगुरु है वो आत्मसत्ता ही है। जो शरीर रूप में हमसे बात कर रही है या मार्गदर्शन कर रही है, वास्तव में वो विशुद्ध ब्रह्म है, वो उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए देश काल के अनुसार भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन बात वही होती है। गीता में देखिए आता है 30 अध्याय के 42वां श्लोक, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तुसा। कहते हैं कि ये इंद्रियां जो हैं वो शरीर से मुकाबले में ये श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, और कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मना, और इंद्रियों से जो परे है वो मन है। मनसः तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ या मन के ऊपर बुद्धि है। कहते हैं या बुद्धे परता तुसा, और बुद्धि के ऊपर वो स्वयं। ये सारा सारा सिस्टम है। इसको महाजी की वाणी में यदि सुने, वो कहते हैं कि तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। ये अर्थात इस शरीर से सूक्ष्म और इस शरीर के पीछे वो इंद्रियां हैं, इंद्री परे मन विस्तार, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और इंद्रियों के पीछे मन की सत्ता है। कहते मन से परे बुद्ध ठहराई, और मन के भी ऊपर, मन का भी कमांड करने वाली जो सत्ता है वो बुद्धि है। और कहते हैं कि बुद्धि परे रतन सुख दाई, और बुद्धि का भी जो मालिक है, बुद्धि के भी ऊपर जो है वो सुखदाई रत्न है, जिसको हम ईश्वर करके कहते हैं, समता करके। लेकिन हम में से प्रत्येक बुद्धि की बात तो समझता है कि जिसके पास जितनी अच्छी बुद्धि होगी उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत होगी। लेकिन संसार में कोई व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति को छोड़ दें, संसार में कोई व्यक्ति भी ना तो ईश्वर की आवश्यकता को फील करता है वो, ना वो ये समझता है कि बुद्धि का मालिक ईश्वर है। बुद्धि पर कृपा उस ईश्वर की होती है हर वक्त, बिना उसी कृपा के बुद्धि का फंक्शन ही नहीं हो सकता, ये बात कोई नहीं समझता। इसीलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आज तक क्या समझते रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में ईश्वर का महत्व नहीं है, क्यों हम पूजा को जरूरी नहीं समझते, क्यों ईश्वर से संबंध बनाना हम जरूरी नहीं समझते। उसका कारण यह है कि हमने आज तक जो कुछ भी अपने आप समझा है वो हम ही नहीं है, कुछ और समझ अपने आप को हम कुछ और रहे। तो जब तक हमारी ये समझ दुरुस्त नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में पूजा का कोई महत्व नहीं। पूजा करेंगे भी तो पूजा के नाम पर केवल पाखंड होगा। जैसे कि आम पब्लिक जो है वो जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो सुन लेते किसी से, भाई उस मंदिर में चले जाओ, उस पेड़ के नीचे चले जाओ, उस मुल्ला के पास चले जाओ, उस पंडित के पास चले जाओ, ज्योतिष के पास चले जाओ, वो तुम्हारा जो है वही दुख दूर कर देगा, या कुछ विशेष प्रकार की पूजा कर लो, विशेष प्रकार का व्रत कर लो, तुम्हारे कष्ट निवारण हो जाएगा। तो सारा का सारा जो है बस यहाँ आके हमारा खत्म। मतलब ये पूजा के नाम पे ये पाखंड है, इसका पूजा से, ईश्वर पूजा से कोई संबंध नहीं। ये जितनी भी हम पूजा समाज में लेते हैं, ये ईश्वर की पूजा है ही नहीं। चाहे हम गीता के साथ देख लें, चाहे हम किसी भी संत की जो वाणी हो उसके साथ से देख लें। इसीलिए पहले अपने विज्ञान को समझना जरूरी है, क्या शरीर क्या है, ये इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, और ईश्वर उसका मालिक जो है वो ईश्वर क्या है। तो सबसे पहले शरीर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी अपनी कहानी। शरीर के बारे में आप सब जानते हैं, किताबों में काफी पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कोई विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं। शरीर के अंदर जो खास बात है वो है हमारी ज्ञान इंद्रियां, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा आप शरीर का और संसार का बोध करते हो। जैसे कि एक आंख है, एक कान है, और एक नासिका है जिसके द्वारा आप खुशबू बदबू सूंघते हो। चौथी आपकी जिह्वा है जिसके द्वारा स्वाद आप महसूस करते हो। और पांचवा है त्वचा, जिसके द्वारा सर्दी गर्मी सख्त मुलायम इसका आप अनुभव करते हो। ये पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपका सारे संसार का, सारी प्रकृति का अनुभव होता है। यदि पांच ज्ञान इंद्रिया आपसे छीन ली जाए तो आप बताओ, खुद सोच के देख लो कि इस शरीर का संसार का क्या करोगे, आपके किसी भी उपयोग का है क्या ये, आप जी के भी क्या करोगे। तो शरीर का भी महत्व केवल इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, लेकिन ज्ञान इंद्रियों को हम जो समझते हैं और वास्तव में ये क्या है, ये भी जरा जानने की कोशिश करें। मान लिया आंख है, तो देखने में ऐसा लगता है जो आंख ये बाहर सामने है, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय। जबकि यदि थोड़ा साइंटिफिक से एनालिसिस करके देखें तो ब्रेन से एक ऑप्टिक नर्व आती है इसके अंदर। वो ऑप्टिक नर्व यदि फेल हो जाए तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि आंख देख नहीं सकती। ये आंख आपकी बिल्कुल सुरक्षित है, इंटैक्ट है बिल्कुल, ये फिर भी ये देखने में समर्थ नहीं है यदि आपकी एक ऑप्टिक नर्व पीछे से फेल हो जाए। इसी प्रकार कान है, इसी प्रकार बाकी आपकी ज्ञान इंद्रिया। तो आगे चलकर ये विज्ञान कितना सूक्ष्म हो जाता है आप देखिए। अभी इसके आगे का वर्णन आएगा तो ये पता लगेगा, ये भी ज्ञान इंद्रिय, मतलब कि इस ब्रेन के अंदर भी ज्ञान इंद्रिया नहीं रहती, ज्ञान इंद्रिया कहीं और रहती। क्योंकि गीता एक और बात भी कहती है कि जिस समय इस शरीर की मौत होती है उस समय ज्ञान इंद्रियां,
मन और बुद्धि जीव के संग ही चली जाती हैं। अर्थात ज्ञान इंद्रियां जो आप समझ रहे हैं वे इतनी सूक्ष्म हैं कि वे मन के संग ही रहती हैं और मन के बिना वे अनुभव नहीं करती। जैसे कि अचानक आपको याद आ जाए कि घर का ताला खुला रह गया है, तब कुछ सेकंड के लिए आपका ध्यान घर पर चला जाएगा। उस समय में कान के द्वारा आपने क्या सुना आपको उसको आप नहीं बता सकते।
तो जो मन आपका यदि कहीं चला गया तो आपकी ज्ञान इंद्रिया काम करना बंद कर देती। इसीलिए ये कहते हैं कि ये पांचों ज्ञान इंद्रिया मन के अंदर निवास करती। और मन अपने आप में आप जानते हो बड़ी ही सूक्ष्म चीज है, कोई भी ऑपरेशन करके मन को निकाल नहीं सकता, आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मन की सत्ता है। आपका यदि मन ना लगे यहां पर तो आप ये सुन भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। तो मन की सत्ता होते हुए भी किसी भी साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव नहीं किया सकता कि मन है। जितनी भी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी ये मेडिकल साइंस भी जो है देखते हैं, आपके जो साइकेटिस्ट होते हैं नहीं, वो कहते हैं मन ही तो बिगड़ा मनुष्य का, लेकिन फिर भी मन के बारे में आप कुछ पता नहीं चलता शरीर में कहां है क्या करता है, लेकिन मन है। स्वप्न के द्वारा इसकी सत्ता का पता लगता है। जिस समय आप रात को सो जाते हो, सोने के बाद आपको स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वप्न में आपका शरीर होता है, आपकी ही ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और आपके संगी साथी भी होते हैं, आपका नया संसार भी होता है। जागने के बाद यदि आपसे पूछो तो आप बताओगे हाँ मैंने स्वप्न देखा था, लेकिन वो स्वप्न क्या इसी शरीर से देखा था? उस स्वप्न में जो काम किए थे आपने, जो आपने पानी में भीगे थे या रेस लगाई थी, वो क्या इसी शरीर से रेस लगाई थी? आप सब कहोगे कि नहीं, इस ये शरीर तो सो रहा था, लेकिन शरीर फिर भी वहां मौजूद था और वो काम भी आपने किया था। यदि किया ही नहीं होता तो आपकी मेमोरी में वो रहता ही नहीं। आपको याद है, याद है, इसका मतलब काम हुआ तभी तो याद है आपको। फिर आपसे पूछो भाई क्या हुआ, वो कैसे स्वप्न देखा? आपको वो मन का संकल्प, बड़ी सादी सीधी से बात कर दोगे, वो एक मन का संकल्प है। इसके आगे आप कुछ नहीं जानते, कुछ इसका एनालिसिस करने की कोशिश नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। जरा विचार करके तो देखो जरा कि आपने अपनी ही आंख से तो देखा था स्वप्न में, अपने ही कान से आपने सुना था, तो वो कान वह वो आंख वो ये जो ज्ञान इंद्रिय है वो आपकी ही तो थी। यदि ये ज्ञान इंद्रियां इस शरीर में स्थित होती तो स्वप्न में उस शरीर में कैसे काम करती? स्वप्न में केवल मन क्रिया कर रहा है, बुद्धि भी वहां क्रिया नहीं कर रही है, केवल मन का संसार वहां कायम है, लेकिन ज्ञान इंद्रियां यही काम कर रही हैं जो इस शरीर में स्थित है। शरीर आपका सो रहा है, ज्ञान इंद्रियां फिर भी आपकी काम कर रही हैं। ये विज्ञान, गीता का विज्ञान ये यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंद्रियों के पीछे मन है और ये इंद्रियां मन के अंदर ही निवास करती हैं। इसीलिए जिस समय शरीर शांत होता है, शरीर की मौत होती है, ये इंद्रियां मन के साथ ही चली जाती है। ना आपसे कोई इंद्रिया छीन सकता है, ना आपसे कोई मन छीन सकता है, ना आपसे कोई बुद्धि छीन सकता है। जो कुछ भी है ये असली संसार है जो आपके साथ ही भ्रमण करता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तो समझने की बात यह है कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मन के अंदर जब व्यक्ति सोता है तो ये ज्ञान इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, वही नींद है आपकी। उस समय जो मन के अंदर संकल्प उठते हैं तो उस संकल्प के साथ नया शरीर आपका खड़ा हो जाता है और यही ज्ञान इंद्रियां फिर वहां पर काम करना शुरू कर देती। अब अगली बात आती है कि मन के ऊपर कहते हैं कि बुद्धि है, मन साहतु परा बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है। इसको कैसे समझा जाए? मन तो संकल्प विकल्प हैं, तरह तरह के आपके अंदर रहते हैं, तरह तरह के डिजायर्स आपके अंदर उठती हैं, उसके लिए संकल्प विकल्प उठते हैं, यही मन है और मन कुछ नहीं है। उसी के द्वारा स्वप्न की रचना हो जाती है, जैसा आपके अंदर संकल्प आया वैसी स्वप्न की रचना हो जाती है। अब बुद्धि क्या है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। तो आपसे यदि मैं कहूं अभी 2 मिनट के लिए आप मौन होकर बैठ जाओ और या 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो जरा, लेकिन आपने बोलना कुछ नहीं है, केवल इसका मौन होकर आपने याद करनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपने मौन होकर याद करना है, उसको बोलना कुछ नहीं, जीभ भी नहीं लानी। 5 मिनट में ही जब आप करके देखोगे तो क्या पाओगे कि बीच में दूसरे संकल्प भी जोर मार रहे हैं। तपोभूमि का पेड़ ही याद आ रहा है, दृश्य ही याद आ रहा है, किसी की शक्ल ही याद आ रही है, आप कोशिश कर रहे हो ओम नमः शिवाय जाप करने की, लेकिन बीच में फिर भी कोई ना कोई संकल्प आता जा रहा है। 5 मिनट के बाद यदि आपसे मैं पूछूं, क्योंकि 5 मिनट की बात तो याद रह जाती है ना, कि भाई आपको बीच में इसके अलावा क्या याद आया, तो आप बता सकते हो मुझे ये बात, 2 या 3 बातें मुझे याद आई थी बीच में। तो जो बातें आपको याद आई हैं इसी को क्या कहते हैं, हम संकल्प कहते हैं। यही मन है और मन कुछ नहीं, संकल्पों का जो समूह है यही मन है। अब समझने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि मैंने मन की इस गति को जान लिया, मेरे मन में क्या संकल्प उठा ये मुझको अच्छी तरह पता लग गया, तो मैं कौन हूं? मैं वही तो हूं ना जो संकल्प को देख रहा है, मैं वही तो हूं ना जो संकल्प को जान रहा है। संकल्प मेरा है, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मैं संकल्प तो नहीं हूं। इसी संकल्प का दूसरा नाम मन है। तो जीव कौन है? जीव वो है जो संकल्प को देख रहा है, संकल्प को समझ रहा है, संकल्प को जान रहा है। तो जीव मन के ऊपर हुआ नहीं हुआ? तो जीव मन के ऊपर है, या यूं कहिए मन का मालिक है, और मन इंद्रियों का मालिक है, और इंद्रियां शरीर की मालिक है। तो बिना इंद्रियों के शरीर का फंक्शन क्या है आपके? कुछ नहीं। तो जैसे जैसे ये विज्ञान सूक्ष्म होता चला जाता है, वैसे ही वैसे ये इंपॉर्टेंट भी होता चला जा रहा है। जितनी चीज ज्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शरीर का फंक्शन इंद्रियों के कारण है, इंद्रियों का फंक्शन मन के कारण है, और मन का फंक्शन बुद्धि के अनुसार है। जिसका मन बुद्धि के कमांड में चलेगा वही मन ठीक इंद्रियों से या और शरीर से काम लेगा। जैसे बालक है, मान लिया आप देखते हो कि बालक की बुद्धि बड़ी कमजोर होती है, इंद्रियां उसकी प्रधान होती हैं, तो मन उसका प्रधान होता है। तो क्या करता है कि मन में जो तरंग उठी, जो डिजायर उठी, वो उसको पूरी करने के लिए मचलने लगता है। अब बालक है छोटा, उसका पेट भरा हुआ है, अब वो उसको टॉफी चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए। अब बुद्धि से विचार नहीं कर रहा कि पेट मेरा भरा हुआ है, यदि मैंने इस पर खाई तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा मैं। वो मन की गति के अनुसार चलता है और डिमांड करता है। तो आप लोग क्या कहते हो कि बच्चा है ये, अभी इसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। तो जो हमारी इस मनुष्य की जो कीमत है वो बुद्धि के कारण है। बुद्धि का निर्णय यदि ठीक है तो हमारी कीमत है, बुद्धि का निर्णय उल्टा है तो हमारी कीमत उसी हिसाब से कम होती चली जाती। तो सवाल यह है कि सत्पुरुष कहते हैं कि इस मनुष्य के अंदर जब तक सतबुद्धि नहीं आती तब तक ये जीव गलतियां करता ही रहता है। उन गलतियों से बचने का एकमात्र रास्ता है कि जीव की जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो सतबुद्धि बन जाए, अर्थात बुद्धि पूरी तरह से होश में आ जाए। सत कहते हैं ईश्वर को, जिसको हमने समता कहा, इसी का दूसरा नाम सत भी है। तो सत कहते हैं ईश्वर को, जब बुद्धि ईश्वर का स्तंग करती है तब इस बुद्धि के अंदर ईश्वर की चमक आती है। वही जो वचन कह रहे थे कि सबकी बुद्धि में उसकी चमक है। तो जैसे जैसे आपकी बुद्धि ईश्वर के साथ उसका संबंध बढ़ता है, ईश्वर को याद करती है, इस बुद्धि के अंदर ईश्वर का प्रकाश आने लगता है। ईश्वर को ज्ञान रूप कहा जाता है ना, इसीलिए ये बुद्धि में ज्ञान वो अवतरित होने लगता है। अब आप देखिए एक इसके उदाहरण के रूप में, अभी जो देवराज जी की बात आ रही थी, देवराज जी के जीवन का एक उदाहरण है। सन 1952 की बात है, जगाधरी में सम्मेलन हो रहा था। तो सुबह को पहली बार कुछ प्रेमियों को भी बोलने का मौका मिला था। तो महाजी कुटिया में बैठे हुए थे प्रेमी, और कुछ नाम लिखे जा रहे थे कि कौन कौन बोलेगा आज। तो देवराज जी क्योंकि धारा प्रवाह वक्ता थे, वो दो दो तीन तीन घंटे लगातार बोल सकते थे, और ऐसा बोलते थे वो कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी, कि आपको नींद आ रही हो तो नींद भी आपकी भाग जाए, इतना प्रभावी उनका लेक्चर, और इतना मतलब कि वर्णन करने का तरीका या उनका बोलने का तरीका था कि एक अट्रैक्शन था उसके अंदर, एक खिंचाव था उसके अंदर। तो देखा कि उन्होंने कि भाई यहाँ 5-7 हजार लोग इकट्ठे होंगे, तो उनके अंदर भी इच्छा हो गई कि मैं भी बोलूं, क्योंकि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने खुद ही महाराज जी के सामने प्रपोजल रख दिया कि महाराज जी मैं भी बोलना चाहता हूं। तो ठीक है, महाजी ने कह दिया कि प्रेमी 10 मिनट इनको भी दे दो। तो बोल पड़े प्रेमी, महाजी 10 मिनट में क्या होता है, 10 मिनट में तो बोलना शुरू होता है। तो खैर महाजी ने उनको 20 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया। खैर उसका जब बोलने का नंबर आया, जब वो खड़े हुए, तो जैसे उन्होंने प्रेमी को एड्रेस किया, उसका क्या देखते हैं वो कि अंदर से विचार कोई निकल ही नहीं रहा है, इतना धारा प्रवाह वक्ता, लेकिन कोई विचार ही नहीं निकल रहा है। उन्होंने पानी मंगाया, पानी पिया, फिर जोर लगाया, लेकिन विचार निकले ही नहीं वहां से। तो बस इतना कह के बैठ गए वो कि पता नहीं क्या ये करिश्मा है कि बुद्धि से विचार गायब ही हो गए। खैर वो बैठ चुपचाप बैठ। उसके बाद हालांकि गुरुदेव से मिले हो, लेकिन गुरुदेव ने ना तो उनसे कुछ पूछा प्रेमी तुमको क्या हुआ, ना उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि मुझको क्या हुआ। कोई बात नहीं। अगला साल फिर आया 53, फिर जगाधरी में वार्षिक सम्मेलन हुआ, फिर वही मौका था। प्रातःकाल महाजी कुटिया जो थी वहां पर प्रेमी बैठे हुए थे घेरा बना के, और नाम लिखा थे कौन कौन बोलेगा। तो महाजी ने कहा भी देवराज जी का, देवराज का नाम ही लिखो। अब देवराज जी चुप हैं, तो देवराज जी क्या बोलते हैं, महाजी मैं नहीं बोल सकता, पिछले साल उन्होंने बोलने की इच्छा प्रकट की थी, इस बार कह रहे हैं, पिछले साल का एक्सपीरियंस याद आ गया ना उनको कि मैं नहीं बोल सकता। तो महाजी क्या कहते हैं देखो, तो प्रेमी आज ये तुमसे कह रहे हैं कि तुम बोलो। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, जो गुरु आ गया। अब जब उनका जो बोलने का वक्त आया, तो जो उन्होंने धारा प्रभाव बोला है उसका इतना प्रभाव पड़ा पब्लिक के ऊपर कि जब वो बोलना उन्होंने बंद किया तो पब्लिक ने डिमांड, ऐसा कभी होता नहीं है, डिमांड कर दी कि अभी जारी, अभी और बोलिए। किसने कहा कि और समय दिया जाए, महाजी बैठे हुए थे वहां तख्त पर। तो महाजी ने इशारा किया प्रेमी जारी रखो, फिर उन्होंने जो है फिर जो है वो अपने आगे थोड़ी देर बोला, उसके बाद बैठ। उस दिन क्या दृश्य देखा कि जिसको देख रहे थे वो वाह वाह कर रहा था, और खुद भी वो कहा उन्होंने कि ऐसे विचार आए, पता ही नहीं वो धारा प्रभा पता नहीं कहां से आ रहे थे। अब यहां जो समझने की और जानने की बात है वो ये है कि बुद्धि तो देवराज की अपनी अपनी थी, सारी ट्रेनिंग की पूरी थी, वो कला भी थी बोलने की, गुरु पास बैठा हुआ है, तो कौन सी शक्ति थी जिसने बुद्धि के प्रकाश को या बुद्धि के ज्ञान को अपनी ओर खींच लिया, अपनी ताकत वापस ले ली। गुरु ने क्या देखा कि शिष्य के अंदर अहंकार है, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि शिष्य के अहंकार को तोड़ा जाए कि तू अपने आप में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरु है करने वाला। ये बात गुरु ने शिष्य को सिखानी होती है, तभी तो गुरु प्राण बनेगा वो, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, कोई चार वेद का ज्ञानी है, कोई शास्त्रों का ज्ञानी है, उस ज्ञान का ही अहंकार रहता है, लेकिन गुरु के आगे पहुंच के पता रहता है कि ये सारा अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, असली काम तो गुरु करता है। तब उस अहंकार को तोड़ने के लिए क्या हुआ, गुरु ने उस बुद्धि की ताकत को खींच लिया, बुद्धि के प्रकाश को खींच लिया, और अगले साल उस बुद्धि को गुरु ने प्रकाशित कर दिया। अब दोनों चीजें शिष्य के अनुभव में आ गए, तब पता लगा कि वास्तव में जो महाजी की बात है कि सबकी बुद्धि में उसकी चमक है, तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से उस ईश्वरीय सत्ता के कारण ये बुद्धि काम करती है, और इसकी यदि बुद्धि में यदि वो चमक डाल दे, ये ताकत डाल दे, तो ये बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि ये वाणी भी इसमें से आने लगती है। ये सारी वाणी देख रहे हैं आप, ये आठवीं क्लास पास विद्यार्थी के मुंह से निकली। समता विलास ग्रंथ देख रहे हैं आप, जो आज आपके सामने व्याख्या हो रही है, ये भी उस आठवीं क्लास पास विद्यार्थी के कलम से लिखा गया। तो ये ताकत बुद्धि में कहां से आ गई? तो बुद्धि जब ईश्वर से जुड़ जाती है, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है, मतलब ये समझे कि उसकी सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है बुद्धि की, जब बुद्धि की यह हालत होती है तब बुद्धि पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है। बुद्धि का अहंकार जब शून्य होता है तो बुद्धि के अंदर वो ईश्वर का ज्ञान अवतरित होने लगता है, ये वाणी उस हालत में आती है, उस हालत में मंत्र भी प्रकट होने लगते हैं, जैसा कि शुरू में जीवनी में सुने थे महामंत्र महाजी को 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ था, उन्होंने उसकी रचना नहीं की थी, ऑटोमेटिकली अंदर से आ रहा है, वो अंदर अनुभव हो रहा है, जो नाद अनुभव होता है वो नाद मंत्र के अक्षरों के रूप में अनुभव हो रहा है, तो किस प्रकार से उस समर्पण बुद्धि के अंदर वो ज्ञान अवतरित होता है, ये इस उदाहरण से पता लगता है। अब देखिए संत ज्ञानेश्वर के जीवन में उनको एक बार चैलेंज कर दिया, सब ज्ञानी मौजूद थे, उनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ये संत है, ये पूर्ण ऋषि है। तो उनके सामने एक चैलेंज रखा गया, यदि तुम सर्वसमर्थ हो, भाई संत है वो तो ईश्वर का अवतार होता है, ये तुम सर्वसमर्थ हो तो ये जो भैंसा है इसके मुख से ऋचाओं का गायन करवा के दिखा दो। तो संत ज्ञानेश्वर ने उस भैंसे के मुख से वेदों की ऋचाओं का गायन करवाया, जिस पर गुरुदेव ने अपनी शक्ति से उनके विचार खींच लिए और फिर अगले वर्ष विचार डाल भी दिए। ये गुरु ने शक्ति दिखाई, गुरु की शक्ति क्या होती है, तो वही काम संत ज्ञानेश्वर ने भी करके दिखाया। तो इन सत्पुरुषों के जीवन से ही तो हमको पता लगता है कि जो बात शास्त्रों में लिखी होती है वो प्रैक्टिकली कितनी सत्य है। तो इसीलिए महाजी ने जो एक लेटर आता है बच्चों के लिए लिखा था उन्होंने, छोटे बालकों के लिए, कि बच्चों को सुबह नहा धोकर पवित्र होकर 25 मिनट इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, इससे बुद्धि तीव्र होती है। क्या लिखते हैं वो, इससे बुद्धि तीव्र होती है। तो बुद्धि जब ईश्वर का संग करेगी तो बुद्धि के अंदर प्रकाश आएगा ही आएगा। और हम लोग बच्चों को बड़ी चीजें सिखाते हैं, लेकिन ये कौन सिखाएगा कि किसी सिद्ध मंत्र के जाप से भी बुद्धि तीव्र हो जाती है, मेमोरी भी आपके फास्ट हो जाती है। तो ये तो सत्पुरुषों के जो वचन है उनसे ये बातें पता लगती है। तो ये जो आपका जो बुद्धि का विज्ञान है ये समझना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूजा को छोड़ते क्यों हैं, पूजा को केवल इसलिए छोड़ते हैं कि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि बुद्धि का कंट्रोल ईश्वर के हाथ। देखो ना कि किसी आप ज्योतिष से पूछो या कभी हम कोई विज्ञान पढ़ो अध्यात्म का, तो एक बात आप बार बार पढ़ते हो कि भाई भाग्य विधाता कहते हो ईश्वर को, भाग्य विधाता। तो भाग्य क्या, कि आपके जीवन में जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं शरीर से वो आपके प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं, और वो कर्म करने के लिए आप मजबूर हो। यही बात अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि ये जो तो युद्ध है ये तेरा प्रारब्ध है, ये तुझको करना ही पड़ेगा, तू जो सोच रहा है कि मैं नहीं करूंगा ये तेरी गलतफहमी। तो ये जीव का जो मालिक है बुद्धि के पीछे, कि निर्णय तो बुद्धि करती ना आपकी, तो आप कर्म करते हो तो लगता तो ऐसा है कि मेरा निर्णय है ये, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि ये निर्णय करने के लिए कोई सत्ता मुझको मजबूर कर रही है, इस बात को आप नहीं समझते हो। तो जब आपके अंदर ईश्वर विश्वास आता है तभी आप ये स्वीकार करते हो कि भाई मेरा जीवन जो, मेरा शरीर जो प्रारब्ध के अनुसार संसार में विचर रहा है, इसके लिए जो बुद्धि का निर्णय हो रहा है वो मेरा प्रारब्ध है, और उसके लिए मुझको जो ईश्वर अंदर ही बैठा हुआ है वो इसको मजबूर कर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है वो फिर ईश्वर को प्रेम से याद करता है, क्योंकि उसको पता लग गया ना कि ईश्वर मेरा मालिक है। अभी तो हम संसार को मालिक समझते हैं, माता पिता को अपना मालिक समझते हैं, नहीं, या अपनी बुद्धिमानी को या अकल को मालिक समझते हैं, लेकिन जिसके अंदर ईश्वर विश्वास आता है वो ईश्वर को अपना वास्तव में मालिक समझता है, वो ईश्वर प्रायण होकर या गुरु प्रायण होकर जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो चैप्टर है आपका समता निदान का, ये इसीलिए इस क्लास में रखा जाता है ताकि आपको ये विश्वास आए सबसे पहले कि भाई ये जो शरीर है ये शरीर ही मैं सब कुछ नहीं हूं, शरीर तो बड़ी ही टेम्परेरी चीज है। अभी जब विषय आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये शरीर तो अभी गया, तो बिना बीच में एक सेकंड का गैप हुए मुझको नया शरीर मिल जाएगा, वो कितना बड़ा होगा वो आज छोड़ दिए। मेरी जो इंद्रियां हैं ये सारी सारी इंद्रियां उस शरीर में सुरक्षित रहेंगी, मेरा जो मन है वो भी सुरक्षित रहेगा, मेरी बुद्धि वो भी सुरक्षित रहेगी, मेरे जो संस्कार है वो सारे उसमें सुरक्षित रहेंगे। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ वास्तव में मेरा है वो सब कुछ बच जाएगा और शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। और मेरे ही संकल्प के अनुसार, यदि गीता के विज्ञान को देखें कि कहते हैं कि गीता में लिखा है कि आखिरी संकल्प के अनुसार मनुष्य को नया शरीर प्राप्त होता है, तो नया शरीर भी मुझको मेरी इच्छा के अनुसार ही मिलेगा। देखो उसमें सुख दुख कितना मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, उसका जो पैकेज है वो ईश्वर उसके अंदर डालता है कि उस शरीर में उसी को हम प्राप्त करके कहते हैं। उसमें क्या मिलेगा तुझको, क्या तुझे छिनेगा, ये तेरे हाथ में नहीं है, तेरी इच्छा के अनुसार नया शरीर तुझको जरूर मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब इच्छा ही करनी है तो ईश्वर को जानने की इच्छा क्यों नहीं करते। तो जीवन भर जो अध्यात्म विद्या पढ़ता है, गुरु के ज्ञान पर विश्वास करके गुरु प्रायण होकर जीवन व्यतीत करता है, वो उसकी कोशिश यही रहती है जीवन भर किसी प्रकार से मैं ईश्वर से अपना प्रेम संबंध बना लूं। तो जिसका जीवन भर प्रयास ये रहता है, जिसका तो कहते ना कि जिसका मुख्य इच्छा यही बनी रहती है, उसको अंत समय भी ईश्वर ही याद आता है, यही इच्छा को लेकर वो शरीर त्यागता है। इसीलिए उसका अगला जन्म मनुष्य का उसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये इच्छा केवल मनुष्य शरीर में पूरी हो सकती है और किसी शरीर में पूरी नहीं हो सकती। तो इस विज्ञान को समझकर हम ये जन्म भी सुधार लेते हैं और हमारा अगला जन्म भी सुधर जाता है। क्योंकि आप देखो, जिसको पूजा करने का शौक है और वो पूजा भी शास्त्रों के या गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करता है, तो सबसे पहला लाभ क्या होता है उसका, कि पाप करने से बच जाता है। जिसके अंदर ईश्वर विश्वास नहीं, कितने पाप करेगा वो, जिसके अंदर ईश्वर विश्वास है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो पापों से बच जाता है, क्योंकि बुद्धि उसकी शुद्ध होती है, ठीक निर्णय लेती है, उसका खान पान ठीक हो जाता है। हम तो बेतुका खाते ना, लेकिन जो ईश्वर भक्त होता है वो संयम रखने वाला होता है, उसका खान पान भी सात्विक होता है और सीमित मात्रा में और वक्त से खाता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर का बनना बिगड़ना तो खान पान से। तीसरा, मानसिक शांति बनी रहती है उसके अंदर। देखिए कितने फायदे हैं मानसिक शांति कैसी, कि अभी आप देखो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भय बना रहेगा, पता नहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। जो आप कर्म करते हो उसमें आपका प्रारब्ध जुड़ा होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार ठीक करते हुए भी काम कई बार बिगड़ जाता है। एक बालक है सपोज, उसने बड़ी अच्छे तैयारी करके एग्जाम देने गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ उसकी क्या गलती। लेकिन यदि ईश्वर विश्वास उसके अंदर है तो जानता है कि यह जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, तो वो उसमें ईश्वर आज्ञा को देखने लगता है। तो जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर आज्ञा को देखने का मतलब कि वो ऐसा ही होना था, ये उसकी बुद्धि निर्णय कर लेती है। जब आप के अंदर आ गई ये बात कि ऐसा ही होना था, ये निश्चित था, तो आपके अंदर संतोष आ जाता है, उस संतोष के कारण आपके अंदर मानसिक शांति बन जाती है। लेकिन ये असली मानसिक शांति वो तो दूसरी चीज है, वो आध्यात्मिक चीज है। लेकिन संसारी रूप में देखें कि मानसिक शांति आपके अंदर बनी रहती है। और क्या देखिए फायदा, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो स्वार्थ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसको सिखाया ही जाता है कि भी दूसरों के लिए जीना सीखो। और हम लोग क्या करते हैं, नई से नई डिजायर पैदा करते हैं और हम चाहते हैं कि पत्नी है तो वो हमारी डिजायर पूरी करे, माता पिता है तो हमारी डिजायर पूरी करे, मित्र है तो हमारी डिजायर पूरी करे, मतलब मेरी मनोकामना पूर्ण हो उसके पीछे रहे। तो अपनी इच्छा हम दूसरों से पूरी करवाना चाहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए दूसरों का हम यूज करते हैं। इससे क्या नतीजा निकलता है कि हमारे संघ के रहने वाले लोग हैं वो हमसे या तो जेलसी करने लगते हैं या नफरत करने लगते हैं या फिर जो है प्रेम हमसे नहीं करते। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो क्या होगा कि हम हमारी कोशिश होती है कि दूसरे का दर्द हमारा दूर हो जाए, हमारे साथ दूसरे की इच्छा पूरी हो जाए, मेरी बात भी हो जाए, कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उससे सब लोग प्रेम करने लगते हैं। भाई जिसको जिसने दूसरे की इच्छा पूरी करनी है, दूसरे का दुख दर्द में सहायक बनना है, उससे सारे प्रेम करेंगे। तो समाज में जो आप ईर्ष्या द्वेष फैलता है आपके अंदर, उसके बजाय आपके अंदर प्रेम आने लगता है। और जो अंतिम बात है कि ये सारा जन्म तो आपका सुधर ही जाता है, और अगले जन्म भी आप इसी जन्म में सुधार लेते हो, अगले जन्म की तैयारी भी इस जन्म में करके जाते हो। कि ये जो स्वभाव लेके जा रहे हो आप, तो बचपन से ही अगले जन्म में यही स्वभाव तो मिलेगा आपको, बचपन से ही। आपकी महाजी के अभी सुने थे जीवनी में कि महाजी खुद कहा कि प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी, उस समय इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है, ये कहां से आ गई इनकी। पूर्व जन्म में तब किया था ना, उन्होंने भक्ति की थी ना, तो वो सारी सारी बचपन में प्राप्त हो गई नहीं हुई, वो पैकेज पूरा मिल गया, जो कसर रह गई थी वो बाद में पूरी कर दी उन्होंने। तो ये जन्म तो सुधर पाया, अगला जन्म भी सुधर जाता है। ईश्वर पूजा के कितने फायदे हैं कल्पना करके देखो। लेकिन यदि ये विज्ञान पता हो तभी तो पूजा करोगे आप, नहीं तो वैसे ही करोगे जैसे दुनिया कर रही है। कोई कहीं आके पेड़ में गांठ बांध आया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई कहीं बच्चा मांगे आया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये पूजा नहीं है, ये तो व्यापार है, ये तो आप करते ही रहते हो। ईश्वर को मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रशियंस है, कम्युनिस्ट है, ईश्वर को मानते ही नहीं बोलो, तो क्या उनका साइंटिस्ट क्या पीछे रह गए क्या? वो अमेरिका से भी आगे निकल गए साइंस के मामले। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिंदगी यदि बनानी है आपने, तो ईश्वर भक्ति के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सारा जीवन आपका वास्तव मनुष्य जीवन जिसको बोलते हैं, वो ईश्वर पर ही निर्भर करता है। आपकी बुद्धि में उसी की चमक, चमक का मतलब साइंस से नहीं है, चमक का मतलब नहीं कि संसार में रहकर आप कितनी चालाकियां कर लेते हो, कितनी खोजें कर लेते हो। चमक का मतलब यह है कि बुद्धि में होश का आना, सही और गलत की पहचान हो जाना, उसके अंदर विवेक आ जाना, यह है बुद्धि की चमक असली रूप में। नहीं तो देखो ना कि कोई भी साइंस का फॉर्मूला जब रिसर्च होता है, कोई भी नया जो है सूत्र जब सामने आता है, तो उसका उपयोग आप उपभोग के लिए करते हो, देश की रक्षा के लिए करते हो, लेकिन साथ में मनुष्य का विनाश भी करने लगते हो। जो भी रिसर्च होती है साइंस की, उसकी आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही होते हैं, उसके फायदे और उसके नुकसान। ऐसी कोई रिसर्च है नहीं जिसका केवल फायदा हो, क्योंकि उसको यूज तो मनुष्य की बुद्धि ने करना है ना, और सतबुद्धि है नहीं, तो अपनी तो रक्षा करने की कोशिश करेगा और दूसरे की नाश करने की कोशिश करेगा, अपना तो अमीर होने की कोशिश करेगा, दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। तो संसार में यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है? इसीलिए जो बुद्धि है वो सही उसको कहते हैं जो सतबुद्धि होती है। तो सतबुद्धि है वो सत के निश्चय से आती है, सत के संग से आती है, सत कहते हैं ईश्वर को। तो जब तक ये बुद्धि उस ईश्वर विज्ञान को समझेगी नहीं और उस पर विश्वास नहीं करेगी कि भाई ईश्वर, जैसे मन के ऊपर बुद्धि है, मन के संग बुद्धि का हर समय है ना, इसी प्रकार इस बुद्धि के ऊपर ईश्वर है और ईश्वर का बुद्धि का निरंतर संग है। तो जब ये बुद्धि उसका मेडिटेशन के द्वारा उसका संग करती है, तब बुद्धि वास्तव में प्रकाशित होती है, इसके अंदर सही विचार आता है, सही विवेक आता है, तब जाकर ये सारा संसार का सही रूप में चलता है। और जो अंतिम लक्ष्य है कि परिवर्तन से मुक्त होना, देखो ना कि सही परिवर्तन हो रहा है आपका, आपके विचार परिवर्तित हो रहे हैं, मन के संकल्प परिवर्तित हो रहे हैं, इस परिवर्तन में दुख है। आप बेचैन होते ना परिवर्तन से, आप बेचैन होते नहीं होते हो? आप चाहते मेरी जवानी बनी रहे, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, आपको कोई बस ही नहीं चलता। चाहते हो जिंदगी बनी रहे लेकिन मौत आ जाती है, कोई बस ही नहीं चलता था। इस परिवर्तन से मुक्त होना चाहते हो, तो परिवर्तन से मुक्त होने का एक ही रास्ता तो हो सकता है, कोई ऐसी स्थायी वस्तु हो जिसमें परिवर्तन ना हो, उससे आपका संबंध बन जाए। तो इसीलिए अध्यात्म विद्या क्या है कि इस परिवर्तन से मुक्त करने के लिए आपको ईश्वर विज्ञान ये समझाती है कि ईश्वर जो है वो परिवर्तन से मुक्त है। उसको कहते हैं, अभी पढ़ा ना आपके, कोई विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी संसार में परिवर्तन हो जाए, कुछ भी, सारा संसार यदि, सारी प्रकृति भी बदल जाए, उस ईश्वर पर कोई असर उसका नहीं होता। इसीलिए जब ये बुद्धि, जब ये जीव उस ईश्वर को अनुभव कर लेता है, और फिर ये अपने आप को उसके हवाले ही कर देता है। उसको कहा जाता है ये पूर्ण श्रद्धा। जब ये जीव अपने आप को उस ईश्वर के पूरी तरह से हवाले कर देता है, तब जाकर कहते हैं कि ये जीव खुद ईश्वर ही बन जाता है। जो रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव के गुण बता रही है रामायण, वही तो ईश्वर के गुण है। चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी वाणी कह रही थी ना कि बुद्धि परे रतन सुखदाई, वो सुखदाई रत्न है। और गोसाई तुलसीदास जी भी कह रहे कि चेतन है ईश्वर, चेतन है और जीव जड़ है, लेकिन जीव कह रहे हैं कि ईश्वर का अंश है, इसलिए जीव के अंदर भी चेतनता है। चेतनता ये ईश्वर के कारण है। और अमल मल रहित है, कोई विकार नहीं, शुद्ध जो जीव है उसमें कोई विकार नहीं, विकार रहित है वो। और सहज सुख की राशि, वो सुख उसका अपना निज स्वरूप है, उसका सुख का सागर है वो, वस्तुओं पर उसका सुख डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में सुख रूप है वो। तो इसलिए जीव जब पूर्ण शुद्ध होता है वो फिर ईश्वर का अंश नहीं रहता, वो ईश्वर ही बन जाता है। इसलिए महाजी से पूछा गया एक प्रेमी के द्वारा कि महाजी ईश्वर क्या है, तो महाजी का बड़ा एक स्पष्ट उत्तर था, क्योंकि बुद्धि के हिसाब से ये जीव जो सामने बैठा है उसके ज्ञान के हिसाब से वो उत्तर दिया करते। प्रेमी तेरी अपनी ही एक स्थिति का नाम ईश्वर है, तेरी अपनी एक स्थिति का नाम ही ईश्वर है। तो देखिए कि एक हमारे जो ये पतन की सीमा कहां जाती है, हम राक्षस कहलाते हैं, और हमारे विकास की सीमा कहां पहुंच जाती है कि हम ईश्वर बन जाते हैं। इसीलिए ये ईश्वर विज्ञान हमको नरक से स्वर्ग ले जाता है। स्वर्ग वो नहीं है कोई जैसे हमारा ये लोक है, ऐसी कोई लोक होगा, यदि लोक हुआ तो इंद्रियों के भोग वहां भी भोग है। तो वक्त स्वर्ग है तो वक्त भी होगा, टाइम भी होगा, तो काल काल तो परिवर्तनशील है ना, तो वो आपके पुण्य जब खत्म होंगे तो फिर नरक कुंड में आ जाओगे, तो फायदा क्या होगा, सुख दुखता का जीवन है वैसे ही बना रहा। तो वो है अमर लोक, उसको कहते हैं अमर लोक, वास्तव में स्वर्ग लोक नहीं है, वो अमर लोक है जहां कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये जीव उस लोक में प्रवेश कर जाता है, उस आत्मा में प्रवेश कर जाता है जिसको कि हम ब्रह्म करके कहते हैं, जिसको हम समता करके कहते हैं। तो ये विज्ञान इसलिए आपके सामने रखा गया ताकि इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि कितना जरूरी काम है जो हमने जीवन में करना है। और क्योंकि सारी जो अध्यात्म विद्या आगे की आएगी, पहले आपको निश्चय ही नहीं आया कि मैंने ईश्वर की भक्ति करनी जरूरी है, कि ईश्वर है क्या, मेरा उसका संबंध क्या है, तो आप करोगे क्यों, आपकी इच्छा ही पैदा नहीं होगी। ज्ञान एक थ्योरेटिकल है जाएगा कि हाँ मैंने बड़ा कुछ सीखा, मैं तुमको भी बता सकता हूं, लेकिन उसका जो यूज है अपने जीवन के लिए असली यूज, वो आप उससे वंचित रह जाओगे। इसीलिए ये विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ये एक बार में समझ नहीं आता, ये बार बार जब स्वाध्याय करते हो, सत्संग का शौक होता है, तो धीरे धीरे ये बातें आपके विश्वास में आ जाती हैं, फिर आप खुद ही दूसरों को ये कहने लग जाते हैं। आपके निश्चय में, जब आपके निश्चय में आती हैं तभी सही रूप में दिल की इच्छा से आप ईश्वर की उपासना शुरू करते हो, और फिर आपके अंदर एक लक्ष्य बनता है कि मैं इस जन्म में ईश्वर को जानकर ही छोड़ूंगा। यदि बीच में मेरी यात्रा अधूरी रह भी गई तो आपके अंदर विश्वास होता है कोई बात नहीं है कि अगला जन्म भी मुझको मनुष्य का ही मिलेगा, और प्रभु मेरी यात्रा है वो अगले जन्म में जरूर पूरी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्य।